पिछले बार हम लोग इस बात की विचार कर रहे थे कि जो हमारी प्रकृति है वो जिस प्रकार से अभी बनी है वो परा प्रकृति का भार, परा प्रकृति की शक्ति, परा प्रकृति का प्रकाश, परा प्रकृति का आनंद और विशालता उसको वहन करने में सक्षम नहीं है। ये रूपांतरण जो कि एक बहुत बड़ी कठिनाई है। जब हम लोग ये सुनते हैं मदर्स फोर्स, मदर्स ग्रेस और हमारे शरीर मन प्राण में उतर जाना, ये एक पोइटिक इमेज नहीं है, ये एक रियलिटी है इनर लाइफ का। और चूंकि ये रियलिटी है इसलिए ये कठिन है। अगर ये केवल मात्र एक पोइट्री का इमेज होता कि हम लोग कल्पना किए और रूपांतरणकारी शक्ति उतर गई और रूपांतरण हो गया तो योग बहुत सरल होता। लेकिन ठीक जैसे पुराने समय के जो तार होते थे वो ज़्यादा करंट सहन करने के लिए बने नहीं थे। जब नए प्रकार के विद्वत, नए प्रकार के ऊर्जा के स्रोत आए तो इतना काफ़ी नहीं था कि देखो अब न्यूक्लियर एनर्जी आ गया है, सब घर में प्रकाश हो जाएगा। सारे तारों को, बल्ब को, सब कुछ को बदलना पड़ा क्योंकि वो उस ऊर्जा का भार सहन नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं कि सुप्रामेंटल वर्ल्ड हैज कम, न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, तो एक और मन में बहुत उत्साह आता है, बहुत कि देखो एक नया जगत आ गया। लेकिन नया जगत का जो शक्ति लेकर आया है, जो प्रकाश लेकर आया है, अभी हमारा मन प्राण शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। और उसकी तैयारी के दो तीन तरीके होते हैं जिससे ये तैयार बने। योग का एक लंबा प्रोसेस केवल इसको तैयार करने में चला जाता है। और जितना गहरा, जितना डिटेल तैयारी होता है उतना अधिक ये योग का जो फल है वो खिलता है। जितना कम तैयारी होगा उतना संकुचित रियलाइजेशन होगा। जितना वृहत तैयारी होगा, जितना वास्ट प्रिपरेशन, एक एक कोने के अंदर, श्री अरविंद सावित्री में एक लाइन लेते हैं, वी मस्ट सर्च अवर बीइंग्स विद द स्पिरिचुअल फायर। किस किस कोने में सीमित चीज़ें छिपी हैं, कौन कौन से कोने में छद्मवेश में दस्यु रिपु छिपे हैं, कौन कौन सा कोना प्रकाश को नहीं देखना चाहता है, कौन कौन सा भाग है जो बहुत कमज़ोर है, कठोर है, रिजु नहीं है, जो थोड़ा सा वजन पड़ने से टूट जाता है। इसका अर्थ है बहुत सचेत होकर जीना। जो तैयारी का जो मेन एक प्रोसेस होता है, माँ कहती हैं जब किसी ने पूछा योग के लिए तैयारी कैसे करें, माँ कहती बी कॉन्शियस। जितने सचेत होगे उतना अधिक हम लोग इस चीज़ को देख पाएंगे कि कौन कौन सा भाग तैयार नहीं है। और इस देख पाने का प्रोसेस कैसे होता है कि हम लोग जीवन के जितने अनुभव होते हैं वो किसी न किसी भाग को सामने लाते हैं और हमको दिखाते हैं मिरर के तरह, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मनुष्य क्या करता है, अपना आँख मूंद लेता है, बोलता है मेरे में नहीं है, दूसरा में है, दूसरा में है, दूसरा में है। लेकिन वास्तव में हमको भाग दिखा रहा है, देखो ये हमारे अंदर है। जब ऐसे गति आती हैं तो घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग इसमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, जब जैसे जैसे ये मूवमेंट्स दिखते हैं अपने अंदर के तो लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, योग से दूर चले जाते हैं, मन के अंदर अपने मन प्राण शरीर को कई बार उन शक्तियों का केंद्र बना लेते हैं जो योग विरोधी हैं। बहुत अद्भुत यात्रा है ये। माने लास्ट टाइम हम लोग शायद इस बात की बात किए थे कि इट इज़ ए रियल एडवेंचर। एडवेंचर जो होता है उसमें क्या होता है, आप स्टार्ट करते हो कि हम लोग जाएंगे हिमालय के लिए तो शुरू में बहुत उत्साह होता है, अरे वाह कितना अच्छा दृश्य है, कोई फोटो दिखाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा है, कैसे जाना होता है, गाड़ी लेके, टिकट लेके, सब मालूम हो गया हम लोग को, सामान भी पैक कर लिया, खूब उत्साह से चले। नैनीताल तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, खूब आनंद आता है। फिर धीरे 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 हिमालय का और गहराई में जब जाते हैं, श्वास लेना कठिन हो रहा है, बहुत सर्दी है, हम लोग जिस सोच रहे थे कि कपड़ा तो बहुत आनंद वाला दृश्य होगा, लेकिन वो आनंद वाला दृश्य के लिए जो रास्ता है बहुत बार दम घोटने वाला रास्ता होता है। इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं इस योग में एक तो यू शुड हैव ए कॉल। अगर चैत्य सत्ता पुकार के साथ इसका चुनाव नहीं किया है तो बहुत आगे आदमी जा नहीं पाता है, थोड़ा आगे जाके रुक जाता है या टूट जाता है या बिखर जाता है। माता जी की एक बहुत सुंदर नाटक है एसेंट टू द ट्रूथ, उसका आई थिंक पेंटिंग भी बना हुआ है, पेंटिंग रेप्लिका बना हुआ है इस मार्ग पर जब हम लोग जाते हैं बीच रोड पर, एसेंट टू द ट्रूथ, सत्य आरोहण। तो उसमें माँ बताती हैं किस किस प्रकार के मनुष्य सत्य की ओर जा रहे हैं और कहाँ कहाँ रुकते हैं, एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं। पहला बताती हैं कि एक फिलेंथ्रोपिस्ट है जो इसलिए जा रहा है सत्य को पाने कि हम मानव का कल्याण कर सकें। बहुत बार योग की तरफ हम इस ध्येय से मुड़ते हैं कि अरे इससे मनुष्य का भला होगा, कई बार मनुष्य भी नहीं मेरा भला होगा। माँ कहती है वो तो सत्यारोहण के मार्ग में ही नहीं है, वी आर नॉट येट रेडी। जब तक हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं वी आर नॉट येट रेडी फॉर द पाथ। मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है कि अपने से आगे कुछ सोच रहे हैं, मनुष्यता का कल्याण। वो फिलेंथ्रोपिस्ट पहला श्रेणी, पहला बिल्डिंग का बहुत सारा लेवल्स है, पहला लेवल पर जाके रुक जाता है। दूसरा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक से यहाँ अर्थ है सत्य का अनुसंधान, जो जानना चाहता है सत्य क्या है, सत्य के खोज में निकला है, वो जाता है दूसरा लेवल पर, वहाँ रुक जाता है। तीसरा परम त्यागी, एसेटिक, सन्यासी, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, सन्यासी है, तीसरा लेवल पर जाके रुक जाता है। कितना। चौथा जो प्रेम बंधुत्व इस भाव से चल रहा है, चौथा लेवल पर जाके रुक जाता है। पांचवा माँ बताती हैं साधक साधिका, जो एकमात्र सब कुछ रिस्क करके वो सत्य को, उस आनंद को, उस भगवान की सेवा उसको खोज रहे हैं, वो जाते हैं और लास्ट में उनको एक ऐसा कदम लेना पड़ता है जहाँ ये भी नहीं मालूम है कि नेक्स्ट में खाई है कि आकाश है। ए स्टेप एंड ऑल इज स्काई एंड गॉड। तो एक लंबा रास्ता है और उसका सोच के चलना चाहिए कि जब प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो हमारे निम्न सत्ता के जो बहुत सारे छिपे हुए कण हैं वो निकलेंगे और उसमें घबराना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना है। अलग अलग लेवल पर चीज़ें आक्रमण करती हैं, मन डाउट से भर जाता है। प्रारंभ में बहुत अच्छा है योग, हाँ यही चीज़ है, पहला कठिनाई आता है डाउट्स, सच में यह है क्या, भगवान सुनते हैं क्या, प्रार्थना का असर होता है क्या, माँ अभी भी हैं कि नहीं हैं, बहुत तरह के डाउट। और इसको अगर हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, श्री अरविंद इसीलिए रिजेक्शन पर जोर देते हैं, रिजेक्ट नहीं करेंगे तो धीरे 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 ये हमारे मन में घर कर लेते हैं और हम कॉन्स्टेंटली इन ए स्टेट ऑफ डाउट एंड फियर जीने लगते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति अगर इस चीज़ को बहुत एनकरेज करता है तो बाद में वही व्यक्ति जो सत्य के खोज के लिए निकला था इन विकृत शंकाओं का यंत्र बन जाता है और उसका दिमाग केवल डाउट्स 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 डाउट्स। तो ये एक लेवल है। दूसरा हृदय पर आक्रमण करते हैं, निम्न प्राण पर आक्रमण करते हैं, जो कुछ छिपा है, काम क्रोध घृणा ईर्ष्या द्वेष, जितनी भी अंदर क्रूरता, सबसे अधिक शेरविन कहते हैं इफ एनीथिंग इज फार्देस्ट फ्रॉम द डिवाइन इट इज क्रुएल्टी। शेरविन से किसी ने पूछा था सबसे अधिक भागवत विरोधी कौन सी मूवमेंट है मानव चेतना में, इसको हम कह सकते हैं कि ये भगवान से बहुत दूर है, तो शेरविन कहते हैं क्रूरता। और कितना अधिक हम लोग क्रूर हैं, इसके लिए दूर जाने का जरूरत नहीं है। क्रूरता दया का बिल्कुल विपरीत है, मनुष्य के प्रति, जीव के प्रति, हर चीज़ के प्रति क्रूरता। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि पाप कौन सा चीज़ है जो सबसे बड़ा पाप कहा जा सकता है, जिसको मनुष्य को निकालना चाहिए अपने अंदर से, कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे पाप का ओरिजिन है, ये योग में पाप पुण्य का कंसेप्ट वैसे नहीं है, लेकिन श्री अरविंद अपने एफोरिज्म में बताते हैं कि कौन सा ऐसा रोग है जो मनुष्य को अपने अंदर बिल्कुल पालना नहीं चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं सेल्फिशनेस एंड मीननेस। सेल्फिशनेस है स्वार्थ, केवल अपना भला देखना, अपना सोचना, मेरा इससे क्या लाभ होगा ये काम करने से। दूसरा मीननेस, मीननेस होता है बहुत छोटा, एक आदमी दूसरा का निंदा करता है इसको मीननेस कहते हैं, एक आदमी दूसरा के प्रति बहुत घृणित विचार पालता है मीननेस, ऐसा आदमी संकीर्ण हो जाता है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि अतिमानस का प्रकाश तो क्या मन का प्रकाश नहीं आ सकता, इवन इट इज़ नॉट ओपन टू मेंटल लाइट, वो इतना सीमित जगह है कि वहाँ दिया, मन का जो छोटा सा दिया है वो जलाने से भी वो नहीं जलता है देर तक। तो ये सारे चीज़ों को अपने अंदर देखना, और ये सब निकलते हैं जैसे जैसे आदमी आगे जाता है उसके प्रभाव से, योग शक्ति के प्रभाव से निकलते हैं। डिप्रेशन, बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और इसका जो सीक्रेट रहस्य ये है कि नॉर्मली मानव का जीवन कामनाओं के लिए एवरेज आदमी जीवन जीता है, इस योग में चूंकि एक प्रेशर है कि आदमी कामनाओं के लिए नहीं जिएगा, तो वो भाग हमारे अंदर तो है, मन जानता है, वो भाग नहीं जानता है, तो क्या करता है डिप्रेशन में चला जाता है, अरे मेरा कोई नहीं है, कोई मेरा नहीं समझता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मैं देखो कितना अकेला हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं इस योग के लायक नहीं हूँ, मुझे चले जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे ये सब विचार आएगा, मुझे चले जाना चाहिए, ये जगह मेरे लिए नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये डिप्रेशन का जब एक व्यक्ति को आता है तो और उसको एनकरेज करते हैं, हाँ यू आर यूजलेस, क्रिटिसिज्म, ये सब चीज़ हम माँ के काम में बाधक। तो ये चीज़ें अंदर में उठती हैं, उनको क्या करना है, माँ कहती हैं एक्सपोज दीज मूवमेंट्स टू द लाइट, जितने ऐसे मूवमेंट निकलेंगे उनको एक्सपोज करना है। लेकिन कौन सा भाग है जो उनको देखेगा और एक्सपोज करेगा, चैत्य सत्ता तो बहुत बाद में निकलती है, माँ ने बोला है 30 ईयर्स ऑफ योगा, तो 30 ईयर्स ऑफ योगा ठीक है, अगर बहुत कोई बहुत सिंसियर है तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स या पूर्व जन्म का कुछ योग का जमा पूंजी है 2 ईयर्स, लेकिन प्रारंभ तो हो गया। तो कौन सा भाग है जिसको पकड़ने से हम अपने निम्न प्रति प्रकृति के बाकी भाग को हेल्प कर सकते हैं प्रकाश देखने में। श्री अरविंद इस प्रश्न को उठाते हैं कि सबसे पहले किस भाग को शुद्ध किया जाए। जब कोई स्नान करता है तो कहाँ से शुरू करते हैं स्नान, कोई कोई लोग पाँव पर पहले पानी डालते हैं, कुछ लोग शरीर पर डालते हैं, कुछ सिर से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लास्ट में जहाँ बहुत गंदगी है पाँव वहाँ पर अच्छा से मालिश करते हैं। बहुत लोग तो करते भी नहीं हैं, गंदा पाँव एकदम गंदा रहेगा, सिर में पानी फेस तक ठीक है। तो सबसे पहले किस भाग को शुद्धि करना प्रारंभ करना है, जिसको शुद्धि करके बाकी हिस्से हेल्प हो सकते हैं। शेरविंद कहते हैं दी फर्स्ट थिंग मनुष्य के अंदर जिस भाग का प्रारंभ करना चाहिए शुद्धिकरण इस बुद्धि, बुद्धि से प्रारंभ करना चाहिए। शेरविंद बताते हैं एक एवरेज आदमी का बुद्धि से प्रारंभ करने का मतलब है लीड ए रीजनेबल लाइफ। माँ बार बार योग में हम लोग सुनते हैं यू हैव टू गो बियॉन्ड रीजन, मन के परे जाना है, बुद्धि के परे जाना है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन परे जाने के लिए आप रॉकेट जब आसमान में उड़ता है तो धरती से प्रारंभ करता है उड़ना। तो मानव चेतना के भूमि में कौन सा भाग है जो इस उड़ान को सस्टेन करके आगे ले जाएगा, तो श्री अरविंद बताते हैं स्टार्ट विद बुद्धि का सफाई करना, प्रारंभ करना है। इसका अर्थ क्या हुआ, बुद्धि के ऊपर क्या क्या चीज़ है जो कपड़ा से ढकती है बुद्धि को, आवरण से ढका हुआ है, उसको पहले हटाना है। एक आवरण जो बुद्धि के ऊपर होता है इंद्रिय का आवरण, हमारी बुद्धि भ्रमित होती है बाहरी दृश्य को देखकर, फट फट से जज करती है बाहर से देखकर, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। आज हम लोग कितना सुंदर माँ बताती हैं, फ्रेंच एंड इंडियन बोथ डबल नेशनैलिटी, आई कैन बी ऑफ इक्वल सर्विस टू ऑल। हम लोग बाहर से जज करते हैं, बाहर से सत्य को पकड़ते हैं, बाहर से समझते हैं। बुद्धि इंद्रियगत है, इंद्रियों का पकड़ में है। इंद्रिया जैसा कहती है बुद्धि उधर जाती है, इंद्रिया कहती है वो बहुत अच्छा चीज़ है, हमारा बुद्धि उधर एकदम गाय का तरह खींच करके जाती है, ये खाने योग्य चीज़ है, हाँ चलो। तो पहले बुद्धि को इंद्रिया का पकड़ से मुक्त करना है। इंद्रिया अपना कर्म करेगी, बुद्धि अपना कर्म कर रही है। इंद्रिया कई बार धोखा दे रही है, बुद्धि बता रही है कि ये ठीक नहीं है, ये धोखा दे रहा है। ये बुद्धि के अंदर ये विवेक जागृत करना बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा कहानी है कि एक बच्चा क्या बोलते हैं, गुड़ का ढेली घर में माँ छोड़ के गई और बच्चा भी घर में था, और बच्चा को बोल के गई गुड़ मत खाना। संसार का नियम है, जो चीज़ मना किया जाता है सबसे पहले आदमी वो करने के लिए आतुर होता है। जब माँ वापस आती है, दिखती गुड़ गायब है, बच्चा से बोलती है जब मैं गई थी तो तुमको और गुड़ को छोड़ के गई थी, आती हूँ तो देखती हूँ खाली तुम हो, गुड़ नहीं है, क्या हुआ? तो बेटा बच्चा बोलता है माँ मैं गुड़ खाया, लेकिन सच पूछो मैं जितना बार खा रहा था उतना बार रो रहा था, रोते रोते खाया हूँ। ये एक बहुत सिंपल सांकेतिक कथा है। बुद्धि क्या कहती है? अगर बुद्धि थोड़ी प्योरीफाई है, बता रही है हमको, इंडिकेशन दे रही है, डोंट डू दिस, दिस इज अनरीजनेबल, ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। और जब बुद्धि ढकी होती है तो क्या बोलता है आदमी? नेचुरल है, हम ऐसा क्यों नहीं करेंगे, वो हमको ऐसा बात बोला है, हमको क्रोध आना नेचुरल है। तो यहाँ नेचुरल चीज़ के लिए तो आदमी है नहीं, यहाँ तो सुपर नेचुरल चीज़ के लिए है। तो बुद्धि भावनाओं से ढक जाती है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं राग, तो हम उसमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, वो बिल्कुल दूसरा दिशा में चल रहा है, पर हमको लगता है बहुत अच्छा है, यही ठीक है। और जिसे द्वेष करते हैं उसका सब कुछ हमको बुरा दिखाई देता है, फ्रॉम द ड्रेस ही वेयर्स, क्या वस्त्र पहनता है उससे लेकर उसका विचार। जिससे हमको द्वेष हो गया वो अगर अच्छा बात भी बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे देखा कुछ मोटिव दूसरा ढूंढ लेंगे। बुद्धि को उसे मुक्त करना है और ये देखना है कि ये चीज़ अपने आप में सही है या गलत है। प्योर तर्क का दृष्टि पर ये खरा उतरता है कि ये ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति जिसको हम बहुत आदर करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उसका मुख से भी कोई बात निकला, बुद्धि कहती है ठीक नहीं है, रिजेक्टेड। गीता में बड़ा सुंदर एक लाइन है, बुद्धि युक्तो जहाती है, बुद्धि से युक्त, ऑलवेज टू बी। इनफैक्ट गीता में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, प्रारंभ योग का होता है बुद्धि योग से, कि बुद्धि को जागृत करो, बुद्धि इनफैक्ट। और गीता में जब अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य का विनाश अधपतन कैसे होता है, तो कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से, क्रोध के पहले कामना जागता है, कामना का पूर्ति नहीं होने से कामात् भवति क्रोधा, क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर मोह भ्रमित हो जाता है, क्रोध के बाद भ्रमित हो जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बुद्धि नाशो स्मृति भ्रंशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होता है एंड द पर्सन फॉल्स। इतना इंपॉर्टेंस, अगर बुद्धि जागृत है तो आदमी लास्ट पॉइंट तक भी पहुंचकर वापस आ जाएगा, बिकॉज बुद्धि विल टेल कहाँ जा रहा है तू। बुद्धि जागृत नहीं है तो चलता चला जाएगा, मालूम नहीं है कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि वन इज नॉट इन पोजिशन ऑफ वन सेल्फ। चैत्य सत्ता के कंट्रोल आने के पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बुद्धि का उपयोग और बुद्धि के द्वारा हमारे पूरे मूवमेंट्स को बुद्धि के अधिकृत करना। इट इज़ नॉट द हाईएस्ट, पर एक इंटरमीडिएट स्टेज है। ये मेरे अंदर जो भावना है बुद्धि के अनुसार ये सही है या सही नहीं है, ये मुझे किस दिशा में ले जा रही है, इसमें वन कैन सी, एक स्टेप हमने लिया है, अभी ये दूसरा स्टेप हमको किधर ले जा रहा है। और जिनका बुद्धि जागृत नहीं होता है वो निकलते कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है, लास्ट में पहुँच के बोले अरे हम कहाँ आ गए। तो लेकिन जिनको मालूम है, बुद्धि का उपयोग करते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जब निकलते हैं रास्ता में, कोई पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, मालूम नहीं, वो लोग जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, फिर बोलेंगे आपने टिकट उकट लिया है, कहाँ टिकट मिलता है, टिकट काउंटर पर जाएंगे, कहाँ का टिकट चाहिए, कहें मालूम नहीं, कहीं का दे दो, कहाँ गाड़ी कहाँ जा रहा है, तो बोलते हैं अच्छा भुवनेश्वर जा रहा है, अच्छा भुवनेश्वर का टिकट दे दो, बैठ गए, उसका बाद में ऐसे चल रहा है, फिर गाड़ी रुक गया स्टेशन आ गया, हाँ कौन सा स्टेशन है, गाड़ी आगे नहीं जाएगा, उतर गए, फिर उनको सचेतन होता है अरे हम कहाँ गए हैं, हम यहाँ जाने के लिए निकले थे ना, कहाँ जाने के लिए। जिसका बुद्धि होता है वो दूसरे ढंग से करता है, वो पूछता है कि हमको कहाँ जाना है, अच्छा आपको भुवनेश्वर जाना है, टिकट खिड़की पर जाएगा, पूछेंगे कहाँ का टिकट चाहिए, भुवनेश्वर का टिकट चाहिए, टिकट देंगे, देखेगा ये सही टिकट है गलत टिकट है, सही जगह जा रहा है गलत जगह जा रहा है, ये ट्रेन सही है कि गलत है, और ये देख करके वो बैठ के चलता है। ये निर्धारित अंदर से, इस योग में कोई सोशल मॉरल रूल नहीं है, कोई बाहरी नियम नहीं है, आप इसलिए कोई काम करेंगे क्योंकि समाज ऐसा कहेगा, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। सामाजिक चेतना में जो लोग जी रहे हैं वो इस योग के लिए तैयार नहीं है। माता जी ने कहा वर्ड है, दोज हु लिव येट इन द सोशल कॉन्शियसनेस आर नॉट येट रेडी टू पुट देयर फीट ऑन द पाथ ऑफ योगा। अगर हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, तो अभी हमारा बहुत दूर है योग से, फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया है। लेकिन अगर हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि बता रही है ये हमको किस दिशा में ले जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, देन वी आर रेडी ऑन द पाथ ऑफ योगा। सेम एक्शन आदमी कर रहा है, एक सामाजिक चेतना से करता है, दूसरा बुद्धि से करता है। सामाजिक चेतना भय के आधार पर काम करती है, मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा नाम खराब होगा, मुझे हो सकता है पनिशमेंट भी मिल जाए, ये भय है, ये योग का रास्ता नहीं है। योग का रास्ता निर्भयता का रास्ता है, अंदर में मन है, बाहर से हमने समाज क्या कहेगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, प्राइवेटली करते हैं। माता जी कहती हैं डोंट डू एनीथिंग हियर विच यू कैनॉट डू पब्लिकली, कोई ऐसा काम नहीं करो जिसको तुम पब्लिकली नहीं कर सकते हो, स्वीकार नहीं कर, दैट इज फार मोर ऑनेस्ट। एक ईमानदारी का पहला चरण है, जो भी काम हम कर रहे हैं, ये नहीं कि अंदर कहीं छिपा करके बाहर का लोग, ये दिस इज नॉट योगा। योगा स्टार्ट्स, हमारा बुद्धि कह रहा है ये जो हम काम कर रहे हैं, वेदर इट इज लीडिंग मी दिस वे दैट वे। बहुत बार लोग चक्कर खाते हैं, निकल आते हैं, क्योंकि बुद्धि अवेकेंड है। जिसका बुद्धि अवेकेंड नहीं है, केवल सामाजिक चेतना में कार्य कर रहा है, वो बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि चेतना में बुद्धि जागृत नहीं है। इमोशंस ये कवर करते हैं। फिर लोअर वाइटल मूवमेंट्स, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वेरी स्ट्रांग मूवमेंट्स, ये जब उठते हैं तो बुद्धि को ऐसे ढक देते हैं जैसे गीता में है, लाइक दी क्लाउड्स कम ओवर दी सन, सूर्य को भी ढक देते हैं। और इसका जागृत उदाहरण है हमारे स्क्रिप्चर्स में, महाभारत में युधिष्ठिर से ज़्यादा सात्विक व्यक्ति कोई नहीं है, और महाभारत में युधिष्ठिर से बड़ा मूर्खता कोई नहीं करता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतना सात्विक व्यक्ति, इतना बुद्धियुक्त व्यक्ति, कोई काम युधिष्ठिर करने के पहले विचार विवेक से जागृत होके ये उचित है अनुचित है। लोग युधिष्ठिर के पास सलाह लेने आते हैं, लेकिन युधिष्ठिर क्या करते हैं, पासा का खेल में अपना वाइफ को दांव पर लगा देते हैं, मीनिंग देयर बाई ही थिंक्स ही इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, सामाजिक चेतना का दृष्टि की बात नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी नहीं है, ये भ्रांति है। एंड युधिष्ठिर पुट्स हर ऑन टू दांव, भाई तुम्हारे नहीं है, भ्रांति है, पुट्स देम, यू हैव नो राइट ओवर देयर लाइफ, बट ही पुट्स इट। और दैट इज ए टिपिकल एग्जाम्पल जो बुद्धि का विनाश, इवन ए ग्रेट मैन लाइक युधिष्ठिर, ये इतना भयंकर चीज है और उसका नतीजा क्या होता है, 13 वर्ष का कष्ट। वो कष्ट क्या है, शुद्धि का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। दुर्योधन जिसका बुद्धि है ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान परीक्षा भी हमारा कैपेसिटी के अनुसार देते हैं। दुर्योधन को कोई राजमहल के बाहर नहीं जाता, वो राजमहल में रह के जेल में रह रहा है, उसको शुद्धि का जरूरत नहीं है। दुर्योधन का बचपना का स्टेज है, भगवान कहते तुमको खिलौना से खेलना है, खेलो। पांडव एक गलती करते हैं युधिष्ठिर, वन मिस्टेक, 13 ईयर्स खुद पत्नी भाई, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते उनको कितना अंदर में आत्मग्लानि हुआ होगा। रामायण में हम कितना आराम से बोल देते 13 बरस वनवास चला गया है इसमें महाभारत में, लेकिन कितना, उसी प्रकार दशरथ बुद्धिनाश, रानी को वचन दिया ठीक है, पर बुद्धि क्या बोलेगी, इज दिस राइट, मैं अपना वचन को पालन करूंगा, आई विल बी रिगार्डेड एज ए ग्रेट मैन, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ क्या उचित कर रहा हूँ, क्या वचन का सीमा व्यक्तिगत स्तर पर समाप्त नहीं हो जाता है, इस वचन में सीमा का अतिक्रमण हो गया है। जो दशरथ से मांगा कैकेयी ने, व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं मांगा, वह चीज़ मांगा जो दशरथ का नहीं है, राज सिंहासन दशरथ का नहीं है, राज्य दशरथ का नहीं है, एंड येट ही गिव्स, दिस इज ए साइन ऑफ बुद्धिनाश, और उसका रिजल्ट ट्रेमेंडस सफरिंग, यहाँ तक कि उनको मृत्यु का वरण करना पड़ा उस शोक विषाद का अवस्था में। सो इस योग में पहला चीज या साइमल्टेनियस मूवमेंट, शेरविन कहते हैं प्योरिफिकेशन, शुद्धि का प्रारंभ बुद्धि से प्रयास, और बुद्धि से पहला चीज जो प्रैक्टिस करना है किसी भी चीज को समझने के लिए सेपरेट करके, हम जब उस चीज़ से जुड़ जाते हैं तो हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। हम सबका ये जीवन का अनुभव है कि एक ही घटना जब 5 साल बाद हम देखते हैं तो दूसरा नज़र आता है, उस समय दूसरा नज़र आ रहा था क्योंकि उस समय हम उसमें इन्वॉल्व थे। उसी प्रकार से जब दूसरे के जीवन में कुछ होता है तो हम उससे अलग रह के देख पाते हैं तो हमको दूसरा दृष्टि में दिखता है, उसको नहीं दिखता है। क्रिकेट का मैच होता है, सब लोग देखते हैं, आपने देखा होगा कैसा कमेंट करते हैं, अरे सचिन को ऐसे मारना चाहिए था, हम लोग वहाँ खड़े होंगे तो एक मिनट के लिए स्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ खड़ा है उतना ही बहुत है, लेकिन जब आदमी सेपरेट करके देखता है तो ये सच है, ही इज़ राइट। हालांकि वहाँ पर एक ग्रेट मास्टर खेल रहा है, येट एक क्रिटिक इज़ राइट, क्योंकि वो उसको निष्पक्ष रूप से देख रहा है कि इसने जो ये मूवमेंट किया ये मूवमेंट सही नहीं था। तो बुद्धि जो होती है वो कई बार रोक नहीं पाती है बाकी पार्ट्स को, लेकिन सेपरेट करके देखती है, ये जो गति है ये मैं प्राण के अधीन होकर कर रहा हूँ, ये मैं भावना के अधीन होकर कर रहा हूँ, ये मैं आवेश में बोल रहा हूँ, ये मैं कामनाओं के अधीन होकर कर रहा हूँ, इस समय मैं क्रोध के वश में हूँ, इस समय मेरे अंदर घृणा चल रही है, इस समय मेरे अंदर ईर्ष्या का डंक लग रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर से ईर्ष्या का डंक लग रहा है, इस समय मैं शरीर की चेतना के अधीन हो गया हूँ, इस समय मैं ग्रीड लालच मुझे पूरी तरह से सता रहा है पीछे से बैकग्राउंड से। जब हम ऐसा देखते हैं निष्पक्ष रूप से तो हमारा सिंसेरिटी का प्रारंभ होता है। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड सिंसेरिटी इज टू रिकॉग्नाइज द फॉल्ट्स इन वन्स ओन नेचर, नॉट रिकॉग्नाइज इन द सेंस कि मैं पापी हूँ मैं बेकार हूँ, नॉट लाइक दैट। कौन से मूवमेंट्स हमारे अंदर क्या क्या कलरिंग लिए हैं, यहाँ तक कि मिक्स्ड होते हैं मूवमेंट, एक अच्छा मूवमेंट एक बुरा मूवमेंट मिक्स्ड है। एक इसका टिपिकल एग्जाम्पल है ह्यूमन लव, चैत्य भाव और प्राणी का आवेग मिक्स्ड है, शेरविन बहुत जगह बताते हैं, इनफैक्ट जानवरों में बताते हैं कि एक बड़ा श्रीविन का एक इवनिंग टॉक्स में ऑब्जर्वेशन है बिल्लियों के बारे में, मनुष्य का बात नहीं, ये बिल्ली जब उस बिल्ले के साथ में है तो उसका केवल एक शारीरिक रिएक्शन है, यही सेम बिल्ली का बात बता रहे हैं, दूसरे के साथ में इसका एक प्राणिक स्पंदन है, तीसरे के साथ इसके अंदर एक चैत्य भाव है। दिस इज सेम कैट। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में तो चीज बुरा तरह मिक्स्ड है, और उस बाहरी चीज को रिजेक्ट करना और अंदर का सत्य को पकड़ना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ योगा, वो कठिन है। धान बोलते हैं जो गेहूं का दाना होता है और उसको जमीन में उगता है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा गेहूं का पेड़, पेड़ नहीं मैंने पौधा जो भी बोलेंगे, तो जब समय आता है, सीजन राइट, ऋतु आता है, तो क्या करते हैं किसान, उसको निकालते हैं, काटते हैं पैडी, उसका बाद उसको तमिलनाडु में तो रोड पर रख देते हैं, गाड़ी जाता है और धीरे धीरे उसमें से जो बेकार का चीज़ है निकल जाता है, और बहुत जगह उसको पीटते हैं, पीटने से अंदर जो गेहूं का दाना है वो निकल जाता है, और जो बेकार चीज़ है उसको लास्ट में भूसा के रूप में गाय को दे देते हैं खाने के लिए। मानव चेतना में उसी तरह एक गेहूं का दाना, उसके चारों तरफ बहुत सारा धान का चीज मिक्स्ड है, और हम लोग गलती क्या करते हैं, गेहूं का दाना और धान दोनों एक साथ फेंक देते हैं। पुराना योग में ये करते थे, यहाँ गेहूं का दाना को निकालना है और धान को, और बाहरी जो उसका कवर है उसको रिजेक्ट करना है। जब रिजेक्शन का बात होता है, इट इज़ द रॉन्ग मूवमेंट इन नेचर दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड, नॉट नेचर इटसेल्फ। प्रकृति को रिजेक्ट नहीं करना है, भोजन को त्याग नहीं करना है, भोजन का अंदर ग्रीड को त्याग करना है, मानव संबंध को त्याग नहीं करना है, मानव संबंध के अंदर अहंकार कामना को त्याग करना है, बुद्धि का उपयोग को त्याग नहीं करना है, बुद्धि का अंदर जो फॉल्स मूवमेंट्स है उसको त्याग करना है, आइडियाज ओपिनियंस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए पहले पौधा उगेगा, राइट सीजन, कटाई होगा, बीटिंग होगा, फिर चुनना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक आँख से, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, प्रारंभ विद द बुद्धि। अपना बुद्धि को सेपरेट करके किसी भी चीज़ से देख पाना, और फिर धीरे धीरे उसको सैंक्शन नहीं देना, फिर वो मूवमेंट चलेगा, आफ्टर सम टाइम इट विल फिनिश। हम लोग क्या करते हैं, इंडल्ज करते हैं, बाद में दुखी होते हैं, 30 years, 40 years इट विल कंटिन्यू, इट विल नॉट चेंज, इट विल बी द सेम। द राइट वे इज टू सेपरेट एंड सी, अलग करके, ये अभी भी कर रहा है वही चीज़, पीछे में कोई चीज़ कह रही नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे इसका पकड़ कम होता जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल जस्ट ड्रॉप ऑफ। दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, शुद्धि का प्रोसेस इस योग में। हम लोग यहाँ पर विश्राम लेंगे और मार्च से विल स्टार्ट अगेन, फेब्रवरी मंथ वी विल जस्ट।